बीती रात चंद खूबसूरत यादगार लम्हे एक दूजे के साथ बिताने के बाद सुबह किसी के जागने से पहले ही दोनों अपने अपने ठिकानों पर लौट गए थे। भले ही साथ बस एक दो घंटे का रहा, पर वो वक्त दोनों के दिलों में हसीन याद बनकर बस गया था। इस वक्त सब नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अचानक अंतरा ने खाते हुए बात छेड़ी,
जी जी, रात में जब हमारी नींद खुली तो आप हमें कमरे में कहीं नहीं देखी।
उसकी ये कहने की देर थी कि आहना का खाना सरक गया और आंखें घबराहट से फैल गईं। उसके बगल में बैठा अक्षय भी चौंका। हड़बड़ी में उसने पानी का ग्लास आहना की ओर बढ़ा दिया। पल्लवी, जो आहना के दूसरी तरफ बैठी थी, उसकी पीठ मलने लगी।
अनु बेटा, आप ठीक हैं? जयेश जी ने चिंतित स्वर में सवाल किया।
आहना कुछ संभल गई थी, उसने सहमति में सर हिलाया।
जी पापा, हम ठीक हैं।
बेटा ध्यान से खाइए, जयंती जी भी परेशान हुई। सबका ध्यान आहना पर था और वे उसकी फिक्र कर रहे थे। इतने में अंतरा ने फिर मुंह खोला।
जी जी, क्या हुआ? हमने तो बस यही पूछा था कि आप रात को कहाँ गई थीं। हमारे जरा से सवाल को सुनकर आप इतना क्यों घबरा गईं कि खाना ही सरका लिया?
जानी सवाल कर रही थी या एक के बाद एक बम फोड़ रही थी? जानकर सब कर रही थी और अनजान बनकर दिखा रही थी। आहना उसकी बातें सुनकर फिर घबरा गई।
वो हम पानी लेने रसोई में आए थे, बताया तो था तुम्हें, पर तुम नींद में थी इसलिए ध्यान नहीं होगा।
अंतरा ने आहना का जवाब सुनकर होंठों को गोल करते हुए शरारत से आंखें मटकाईं।
ओह हाँ, ऐसा हो सकता है, नींद में मैंने सुना नहीं होगा। और जब आंख खुलने पर आप कहीं नहीं दिखी तो हमें लगा कि कहीं आप आधी रात गई ठंडी हवा खानी, छत पर तो नहीं चली गई।
अंतरा जानकर उसे छेड़ रही थी और उसे बड़ा मजा आ रहा था अपनी भोली भाली जीजी को सताने में। अंतरा की बात सुनकर आहना की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने सकपकाते हुए कहा,
छत पर? हम आधी रात को छत पर क्यों जाएंगे?
अंतरा अभी आगे भी कुछ कहती कि इतने में जयंती जी ने उसे डांटा।
अंतरा, ये क्या बातें लेकर बैठ गईं आप? खाना खाइए चुपचाप।
अंतरा ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा और उन्होंने भी गुस्से भरी आंखें दिखाईं। अंत में अंतरा मुंह बिछोड़ते हुए चुप हो गई। शायद जयंती जी की अनुभवी आंखें आहना के व्यवहार को देखकर कुछ भांप गई थीं, इसीलिए उन्होंने बात यहीं खत्म कर दी। निशांत और पल्लवी संग अन्वय भी कुछ कुछ माजरा समझ चुका था और अंतरा की शैतानी देखकर मन ही मन हंस पड़ा था। अक्षय को आहना की हालत पर तरस आने लगा था, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सबने ध्यान अब खाने पर लगा लिया। आहना भी सर झुकाए चुपचाप खाना खाने लगी।
ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि दोपहर या शाम तक निकलेंगे।
अभी घड़ी ने सुबह के 10 ही बजाए थे और अक्षय ने अपने जाने की बात कह दी थी। जयंती जी और जयेश जी से इजाजत भी ले ली थी। आहना को खबर जरा देर से मिली और इस वक्त वो बेचैन सी अक्षय के सामने खड़ी सवाल कर रही थी।
छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, पर अभी सर का फोन आया है कि लंच के बाद हमारे वीआईपी पेशेंट की अपॉइंटमेंट है जिन्हें मैं हैंडल करता हूँ, तो मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है और वहां वक्त पर पहुंचने के लिए अभी निकलना पड़ेगा मुझे।
अक्षय ने संक्षेप में सारी बातों से बता दी और अपने कपड़े व साथ लाया सामान बैग में रखने लगा था।
हटिए, हम कर दें, आहना ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोक दिया।
अक्षय भी चुपचाप साइड हट गया और हाथ बांधे खामोशी से उसे निहारने लगा।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें?
आहना सब सामान पैक करने के बाद उसकी ओर पलटी। उसके सवाल सुनकर अक्षय ने उसकी हथेलियों को थामते हुए उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर नजरें टिकाते हुए संजीदगी से बोला,
देख रहा हूँ आज मेरे चांद के चेहरे की कशिश कुछ कम सी लग रही है और उस पर उदासी के बादल घिराए हैं।
आप ऐसे अचानक जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। आहना ने शायद पहली दफा बिना हिचकिचाए अपने मन की भावनाओं को अक्षय के सामने जाहिर किया था। अक्षय भी उसके मनोभावों को समझ रहा था। उसने बेहद प्यार से उसे समझाया,
मजबूरी है आहना, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। मैं भी आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर जाना तो पड़ेगा ना।
हम समझते हैं, इसीलिए आपको रोक नहीं रहे। आहना ने धीरे से पलके उठाकर उसे देखा और मायूस स्वर में कहा,
अच्छा इधर आइए आप मेरे पास, जाने से पहले आपको महसूस कर लूं मैं, फिर जाने कब दोबारा ये पल मेरे नसीब में आए।
अक्षय ने आहना की हथेली थामे उसे अपने करीब किया और बाहों में समेट लिया। आहना भी खामोशी से उसकी बाहों के घेरे में सिमट गई। उसके सीने से लगी उसने महसूस किया उसकी धड़कनों को, जो आज कुछ बेचैन लग रही थी, बिल्कुल उसकी धड़कनों जैसी।
आप यूं अचानक जा रहे हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी में स्पीड में गाड़ी मत चलाइएगा और पहुंचकर फोन कीजिएगा हमें, हम इंतजार करेंगे।
आहना के शब्दों में अक्षय के लिए उसकी फिक्र और परवाह साफ झलक रही थी। वो उसके लिए चिंतित थी और ये बात अक्षय के लबों पर ठहरी मुस्कान की वजह बन गई थी।
मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, पर आप भी चिंता मत कीजिए, मेरी ओर से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आप ऐसे परेशान और दुखी होंगी तो मैं आपको छोड़कर जा नहीं पाऊंगा, अगर चला गया तो मेरा ध्यान आप में ही लगा रहेगा।
आहना ने उसकी बात पर सर हिला दिया। अब भी उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी, जिसे दूर करने के इरादे से अक्षय ने मुस्कुराते हुए बात का रुख मोड़ा।
वैसे आहना आपके बहन भाई हैं बहुत ही शैतान। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने शरारती होंगे। अंतरा का तो फिर भी थोड़ा बहुत पता चल गया था, पर निशांत से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो भी अंतरा से कम नहीं है। रात को दोनों ने मिलकर सब प्लान किया था ताकि हमें परेशान कर सके, और सुबह अंतरा जानकर आपको सवाल पूछ पूछ कर तंग कर रही थी। अक्षय को अपने मकसद में कामयाबी मिली थी। आहना का ध्यान भटक गया था। अक्षय की बात सुनकर चेहरे के भाव कुछ सामान्य हो गए थे। आप अभी उन दोनों को ठीक से जानते नहीं हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। कोई किसी से जरा भी कम या ज्यादा नहीं। एक नंबर के शैतान हैं दोनों, और उनकी हर शरारत जोड़ी में ही होती है। तभी तो माँ दोनों पर इतना नाराज रहती है। तो मतलब अंतरा और निशांत एक जैसे हैं, नटखट शैतान बातूनी, और आप और भैया एक जैसे, शांत शालीन समझदार। हमारा पता नहीं, पर भैया बहुत समझदार हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। हम पर तो कभी करते नहीं, पर अंतरा और निशांत हमेशा उनके गुस्से का शिकार बनते हैं। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, पर भैया जितना नहीं। अंतरा उन्हें खड़ूस कहती है, पर हमें तो भैया बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो लगेंगे ही, आपको डांटते जो नहीं है, और आप हैं भी इतनी स्वीट और क्यूट कि कोई चाहे भी तो आप पर गुस्सा नहीं कर सकता। अक्षय ने शोक निगाहों से उसे देखते हुए उसके गालों को पकड़कर हल्के से खींचा, और आहना ने अगले ही पल नाराजगी से उसके हाथों को हटा दिया। देर हो रही है आपको, निकलने का वक्त हो रहा है, इसलिए अभी हमारी तारीफ करना बंद कीजिए और नीचे चलिए। अक्षय ने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया, फिर एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर पर अपने बेकरार लबों को टिका दिया। यार तुम तो बड़ी जल्दी वापस जा रहे हो, कितना मजा आ रहा था तुम्हारे साथ। ये अंतरा थी जो अन्वय के जाने से उदास थी। उसके आने के बाद से अब तक काफी वक्त दोनों ने साथ बिताया था। होली की मौज मस्ती के बाद हॉल में बैठकर साथ में गानों पर झूमना और रात की हंसी ठिठोली दोनों की खूब जमी थी, और अब उसके जाने पर वो उदास थी। उसे उदास देखकर अन्वय का दिल खुशी से छलांगे मार रहा था। कोई बात नहीं, अब की बार तुम आ जाना, मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमाऊंगा और वहां हम खूब मस्ती करेंगे। अन्वय ने उसे अपनी चाशनी जैसी मीठी बातों में फंसाना चाहा। इसी बहाने उसे उसके साथ कुछ वक्त जो मिलने वाला था, पर उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह उतर गया।
इतना आसान नहीं है दिल्ली आना, कोई ठोस वजह भी होनी चाहिए। अगर मामा के घर जाते भी हूँ तो तुम्हारे साथ घूमना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मामा के भी बच्चे हैं। अगर कहूंगी कि घूमने जाना है तो वही घुमा देंगे, पर मुझे उनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती। सब इतने शरीफ हैं कि मेरा उनके बीच खुलकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अंतरा ने उन्हें याद करते हुए बुरी सी शक्ल बनाई, जिसे देखकर अन्वय हंस पड़ा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जितनी शैतान तुम हो शराफत तुमसे हजम ही नहीं हो सकती। अन्वय बोलते हुए एक बार फिर हंस पड़ा, पर उसकी बातें सुनकर अंतरा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गालों को नाराजगी से फुलाया और आंखें छोटी छोटी किए उसे भूरने लगी।